الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. The topic گزشتہ کئی جمعوں سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جنت میں جانا آسان اور جہنم میں جانا مشکل کام ہے. اللہ رب العزت نے جنت کا راستہ انہی گلی کوچوں اور بازاروں میں سے گزرتے ہوئے بنایا ہے. یہی دنیا ہے جس میں ہم نے رہنا ہے, سہنا ہے, ایک دوسرے سے معاملہ کرنا ہے. کوئی اچھا معاملہ کرے گا, کوئی برا معاملہ کرے گا. جو اچھا معاملہ کرے گا اس کو اجر و ثواب ملے گا, جو برا معاملہ کرے گا اس کا نقصان ہوگا. جیسے امتحان ملٹیپل چوائس کوشچن ہوتے ہیں, ملتی جلتی چوائسیز ہوتی ہیں. بندہ اگر غلط چوائس کو لے لے تو اس کا سوال غلط ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح زندگی ٹرائلز ہیں, ہر وقت کوئی نہ کوئی سچویشن لاحق ہے. انسان ہر وقت کسی نہ کسی چیلنج سے دوچار ہے. اب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے. کرامن کاتبین جو فرشتے مقرر ہیں وہ بندے کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے لکھتے چلے جاتے ہیں اور کتاب بھرتی چلی جاتی ہے. حشر کے دن اللہ رب العزت یہ کتاب بندے کے ہاتھ میں دے دیں گے کہ تم خود ہی پڑھ لو. بندہ خود حیران ہوگا کہ اس میں ہر بات لکھی ہوئی ہے. الا کہ بندہ توبہ کر لے اخلاص کے ساتھ اور اس کے برے اعمال کو اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ کر دے. جیسے بڑی سے بڑی فائل ہو, ڈیلیٹ کا ایک بٹن دبانے سے وہ کمپیوٹر سے غائب ہو جاتی ہے, نظر نہیں آتی. حالانکہ بڑی ساری فائل ہوتی ہے. گناہوں کے انبار ہوں اور بندے نے ہاتھ اٹھایا توبہ کی, اللہ معافی دے دیجئے, اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں, فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں. زمین کے ٹکڑے اور جسم کے اعضاء جن سے گناہ کیے تھے ان کی شہادت بھی ختم کر دیتا. اور اسی طرح وہ نیک اعمال جو بندے نے اخلاص سے نہیں کیے ہوتے, لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیے ہوتے ہیں, یہ کاغذی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں. حشر کے دن یہ اعمال کا ڈھیر ہوگا, ہوا چلے گی, ان کا وزن نہیں ہوگا, یہ اڑیں گے اور چلے جائیں گے. بندہ دیکھتا رہ جائے گا کہ یہ کیا ہوا, ابھی تو ڈھیر لگا ہوا تھا اعمال کا اور وہ ختم ہو گیا, راکھ کی طرح اڑ جائیں گے. جیسے اس دنیا میں گریویٹی فورس ہوتی ہے, کشش ثقل کہتے ہیں اس کو, وہ اس فورس کی وجہ سے اس چیز کا وزن ہوتا ہے. ایک آدمی ہے, اس کا وزن 100 کلو ہو, इस बंदे को अगर स्पेस में ले जाएं तो एक जगह ऐसा आती है जहां इस बंदे का वजन जीरो हो जाता है। तो अमाल का वजन बंदे के तकवे के साथ है, इखलास के साथ है। अगर ये तकवा उसके अंदर मौजूद होगा, ये इखलास मौजूद होगा, तो यो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ती चली जाएगी। यही बंदा बाज प्लैनेट्स पे अगर चला जाए तो शायद इसका वजन 1000 किलो हो जाएगा। बंदा तो वही है, मास नहीं बढ़ा उसका, ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ गई है। जो बंदा इलाहियत के साथ नमाज पढ़ता सारी मस्जिद भरी होती है, हर बंदे ने वही 2 रकात पढ़े, 4 रकात पढ़े, लेकिन जिसका ताल्लुक है अल्लाह ताला के साथ उसकी नमाज और है और दूसरे लोगों की नमाज और है, क्योंकि उसके पीछे उसकी फोर्स है और वो फोर्स अल्लाह ताला का ताल्लुक है, ताल्लुक बिल्ला। ये मशायख की जो मेहनत है बिला वजह की नहीं है। अगर यूं कहा जाए कि ये उस ग्रेविटेशन फोर्स को बढ़ाना चाहते हैं ताकि हशर के दिन इनके वही आमाल होंगे। देखो इसको एक और मिसाल से समझो, सहाबा कराम को फिक्र लगी कि हमारी जिंदगी तो एवरेज 60-70 साल की है, जिसमें बचपन भी गुजरेगा और बुढ़ापे की बीमारी के दिन भी आएंगे, हमारे पल्ले क्या बच्चा है जो हम अल्लाह की इबादत करेंगे, दिन ही नहीं है हमारे पास। जबकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के लोगों की उम्र 1000-1000 साल होती थी। बनी इसराइल के लोगों के बारे में कहा कि कई 100 साल फला ने इबादत की, पत्थर घिसा दिए, और ये उम्मत मोहम्मदी किस तरह से अमाल करे जब जिंदगी का चांस ही नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तसल्ली दी कि तुम्हारे अमाल की कीमत ज्यादा लगेगी। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि किसी काम के लिए मदद करो और माल सदका करो, अल्लाह के राह में खर्च करो, डोनेशन दो, फंड रेजिंग जिसे कहते हैं आजकल की लैंग्वेज में। कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। एक सहाबी के पास कुछ भी नहीं था, वो एक खजूर लेकर आ गया, ढेर लगा हुआ था चीजों का। और ये सहाबी जब खजूर लेकर आए तो दूसरे लोगों ने देखा कि भाई ये क्या लेकर आ गए हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूर लेकर उस सारे ढेर के ऊपर रख दी कि इसके पास यही एक ही खजूर थी, वो उठा के लिया है। अल्लाह के नबी, जो कुछ मेरे पास था सब हाजिर है, ये लो, मेरा दिल, मेरी जान, मैं आप पर कुर्बान, सब कुछ हाजिर कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी उस खजूर को सबसे ऊपर रख दिया। देखना तो ताल्लुक होता है, ना कि क्वांटिटी को गिनना होता है, क्वालिटी मैटर करती है। आपको लोग जो मर्जी ला के दें, जितने मर्जी हदिया ला के दें, और आपके दिल में फीलिंग हो इस बंदे के दिल में मेरे साथ सिंसियरिटी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? फीकी मुस्कुराहटें हैं जी, उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। तो भाई वहां पर जो चीज काउंट होगी वो ताल्लुक होगा, और वो ताल्लुक किस चीज से पैदा होता है? मोहब्बत के साथ, तकवे के साथ। और जिस बंदे में तकवा है, जिस बंदे में मोहब्बत है, وہ خود بخود تابعدار ہوتا ہے. اور تابعداری کے لیے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اگر تم میری تابعداری کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے رسول کی اتباع کرو. یہ ایک راستہ سمجھا دیا. تو اس طریقے سے تم میرے قریب آ جاؤ گے. تو بہرحال ہمارا عنوان ان دنوں میں یہ چل رہا تھا کہ جنت میں جانا آسان اور جہنم میں جانا مشکل کام. آج جہنم میں جانے کے لیے اگر آپ جہنمی زندگی کو غور کر کے دیکھیں گے آپ کو لگے گا صبح سے شام تک یہ بندے کتنی محنت کرتے ہیں. مثلا آپ ذرا پوچھیں ان لوگوں سے جو کسی کلب میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا ساری ساری رات ہل ہل کے ناچنا پڑتا ہے. اور نماز پڑھنا کتنا آسان ہے. ساری رات نماز پڑھتے رہو اطمینان سے کھڑے رہو اور کلب والے ساری رات ناچ ناچ کے بے ہوش ہو رہے ہوں گے صبح تک. جہنم میں جانا کتنا مشکل کام. تہجد پڑھ کر جنت میں جانا کتنا آسان. آپ یہ دیکھیں لوگ اپنی انجوائمنٹ کے لیے لاٹو کھیلتے ہیں. کتنا مال برباد کرنا پڑتا ہے, کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اور اس کے مقابلے میں بندہ زکوٰۃ دے دے 2.5%, بہت سستی. جنت سستی, جہنم مہنگی. لوگ لاٹو میں سارا سارا مال لگا دیتے ہیں اور ملتی کیا اس کے بعد؟ جہنم. اپنی بیوی سے تعلق حلال طیب, گھر کے اندر اطمینان سے, اور وہ عاشق نامراد جو سڑکوں پہ مارے مارے پھرتے ہیں حسرت لے کر, کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں, کن کن تکلیفوں سے گزرتے ہیں, ذرا سوچو تو صحیح. ملتا کیا ہے ان کو؟ جہنم. اور گھر کے بیوی سے محبت کرنے سے جنت ملتی ہے. سوکھا کام چھوڑ کر بد نظری کرتے پھرتے ہیں, ہر آتی جاتی کو دیکھتے پھرتے ہیں, ملے گا کیا؟ جہنم. تو بھائی جہنم میں جانا مشکل بنایا اللہ نے. اللہ نہیں چاہتے کہ کوئی جہنم میں چلا جائے. یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اور جنت میں جانا آسان. آج ہمارا ٹاپک میاں بیوی کے درمیان خوش خوش رہنے پر اللہ تعالیٰ نے جنت دی ہوئی ہے. حالانکہ دیکھو میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورت ہیں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرت ماتت, اگر کوئی عورت اس حال میں مر جائے وزوجہا انہا رودن, کہ اس کا زوج جو ہے اس سے راضی ہو, خوش ہو, داخلت الجنہ, تو جنت میں چلی گئی. بتاؤ بھائی کتنا آسان کام ہے. ساری زندگی مزے کرو, میاں بیوی کی زندگی گزارو اور اللہ سے ڈرو اور تقاضوں کو پورا کرو زندگی کے اور جنت میں چلے جاؤ. تو معلوم ہوا کہ جنت میں جانا تو اللہ نے بہت آسان سیدھا راستہ بنایا ہوا ہے, کوئی پیچیدگی ہے ہی نہیں. ہاں اس میں شیطان پیچیدگی ڈال دیتا ہے. شیطان بندے کو ورغلاتا ہے, بری باتیں سکھاتا ہے, और अच्छे खासे घर को बर्बाद कर देता है। ये जो वसवसा होता है शयातीन का, इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आइडियाज कह सकते हैं। शैतान आइडियाज देता है, बंदे की मर्जी है कि वो आइडिया बाय कर ले या रिजेक्ट कर दे। अब कोई बंदा अपनी कोई चीज बेच रहा हो तो वो आवाज लगाता है और बताएगा कि जनाब मीठे मीठे आम ले लो, खुशबूदार आम ले लो, फलां ले लो, ये ले लो, वो ले लो। कुछ लोग जो हैं उस आवाज को सुनते हैं, फिर आम को देखते हैं, फिर करीब आते हैं, उसको छूते हैं, फिर उसको सूंघते हैं, फिर कहते हैं यार ये तो आम जबरदस्त है, चलो बाय कर लेते हैं, घर ले जाते हैं और धो धा के फिर उसको खाते हैं, चखते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं। अब वो जो बंदा आवाजें दे रहा था उसने इस बंदे को कैश कर लिया ना, तो हमने आम बेच दिए। एक लतीफा सुना देते हैं यहां पर, याद आ गया। एक मरतबा एक शहर था, वहां पर एक बंदा तरबूज बेचने का काम करता था, वाटरमेलन। अब जो लोग पाकिस्तान वगैरह उन मुल्कों में गए हैं उन्होंने देखा होगा कि सड़क के किनारे पर वो पूरा ट्रक ही लाकर तरबूज का वहां रख देते हैं और उसमें एक दो तरबूज काट के डेकोरेशन के करके रख देते हैं। लोग रास्ते में से गुजरते हैं, देखते हैं तरबूज बिक रहे हैं तो वो खरीद लेते हैं। अब ये बंदे ने किसी माली से, किसी किसान से तरबूज का ट्रक खरीदा होगा, वो लेकर आया, उसने ला के वहां पर सड़क के किनारे तरबूज रखे, तरबूज काटा, देखा अंदर से वो बिल्कुल सफेद। लाल तरबूज आमतौर पे अट्रैक्टिव भी होते हैं और मीठे भी होते हैं। अब ये बंदा, इसने कहा भाई ये तरबूज कौन लेगा, ये तो बिल्कुल ही सफेद और फीके, बिल्कुल फीके। आप विचारे कि इन्वेस्टमेंट थी ये पूरी, और उसको लगा टोटल लॉस हो गया, मारा गया मैं तो। लेकिन बंदा स्मार्ट था, उसने सोचा कुछ करना चाहिए इसके लिए। लिहाजा उसने एक बंदा जो खुश खत लिखने वाला था उसको पकड़ा और कहा एक बैनर तो बना के दो। और उन्होंने कहा कि क्या लिखना है इस पर। उन्होंने कहा आप लिखें लाहौर में पहली मरतबा शुगर फ्री तरबूज। तो आइडिया आ गया, तो वो जनाब लिखकर उसने जनाब वहां लटका दिया। आप बंदे जो भी गुजरते कहते ओ, जिसको भी डायबिटीज है या उसकी अम्मी को है या अबू को है या फलां दादा दादी कोई भी है, भाई ये तो जबरदस्त भाई डाइट वाले तरबूज हैं, वो लेके जाता अम्मी आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूं खाओ। अल्लाह अकबर, आइडिया है ना, उसके दिमाग में आ गया, सारे तरबूज बिक गए, जबरदस्त भाई। तो शैतान इस तरह से आइडिया देता है, होते वो इसी किस्म के हैं फीके, कोई उसमें मजा नहीं होता, लेकिन बस उसकी रैपिंग ऐसी होती है, उसको सेल करने की टेक्निक आती है। और वो इतने जमाने से इस काम को कर रहा है और इंसान को बेवकूफ बना रहा है। और इस बेवकूफ बनने से बचना किस तरह मुमकिन है कि बंदे के पास अगर खबर का इलम हो, خبر کا علم کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں، میسج دیتے ہیں اپنے میسنجر کے تھرو. تو خبر کے پر جو بندہ چلتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے. بھائی حرام چیز ہے، ہمیں کیسے پتا چلا کہ حرام چیز ہے؟ میڈک نہیں کھاتے ہوتے، کیوں نہیں کھاتے ہوتے؟ ہمیں کیا پتا کیوں نہیں کھاتے ہوتے؟ اس لیے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. جس کو یہ خبر نہیں ملی یا اس نے اس میسج پہ بلیو نہیں کیا، وہ تو میڈک بھی کھائے گا، وہ تو میڈک کھائے گا. اس بیچارے کو وہ خبر ملی نہیں، یا یوں سمجھے اس نے خبر کو بلیو نہیں کیا. کسی بندے کو پتہ نہ ہو کہ اس کھانے میں زہر ہے، وہ کھا لے گا اس کو. جس کو خبر مل گئی کھانے میں زہر ہے، وہ کبھی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا. گناہ سارے کے سارے زہر ہیں، بھول کے کر بیٹھے، جان بوجھ کے کر بیٹھے، زہر کا ایفیکٹ ہوتا ہے. روحانی اعتبار سے وہ نقصان پہنچائے گا ہی پہنچائے گا. اور اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ توبہ استغفار. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے، یعنی بے شمار مرتبہ استغفار کرتے تھے. تو بندے کو استغفار کرنی چاہیے. تو بھائی میاں بیوی کی ساتھ زندگی گزارنا ہو اور اچھی اچھی زندگی گزاریں، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت دی ہے. اب جس کو یہ بات پتہ نہ ہو تو وہ کہیں گے کہ میاں بیوی کا رشتہ ہی نہ ہو. بعض ایسے مذاہب ہیں جس میں میاں بیوی کے رشتے کو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا. میاں بیوی کے تعلق سے اللہ کا قرب زیادہ ملے گا، ان کو نہیں پتہ اس بات کا. لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی کا تعلق نہیں کریں گے. اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ خود ہی سفرنگ کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ گناہ کے چانس بھی ان کے لیے بڑھ جاتے ہیں. تو اب یہ آئیڈیا ان کو کس نے دیا کہ میاں بیوی کے تعلق نہ کرو؟ صاحب ظاہر ہے شیطان نے دیا. اچھا اسی طرح میاں بیوی کے بجائے کوئی بندہ اگر کوئی اور طریقہ کار اختیار کر لے تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ اس طریقے سے بھی ثواب نہیں ملے گا. اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. لہذا جو بندہ اس طریقے کو اڈاپٹ کرے گا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے جو خبر کے مطابق ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کر کے دکھائیں، شادیاں کر کے دکھائیں. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیوی ہوتی، یہ بھی ممکن تھا. ہاں نا ممکن. بھائی زندگی تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو. اگر ایک بیوی ہوتی اور وہ ان کی ہم عمر ہوتی، مثال کے طور پر جیسے اکثر ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے کہ بھئی چند سال کے ڈفرنس پر شادی کرتے ہیں، تو اب کسی کی شادی ہو جاتی چھوٹی عمر والی کے ساتھ، تو وہ کہتا کہ بھئی میرے پاس تو مثال ہی نہیں ہے دین اسلام کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ تو میاں بیوی کی اس لیے تھی کہ وہ ہم عمر تھے، اس لیے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عمر تھی، اور اب عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ جو بالکل بچی والی. مینٹل میچیورٹی کا کتنا ڈفرنس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہینڈل کر کے دکھایا. اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو مثال قائم کر دی. اب دوسرا آدمی کہہ سکتا ہے چلو بھائی ٹھیک ہے، یہ تو چھوٹی عمر تھی، محبت بھی ہوتی ہے چھوٹی عمر والی، بڑے عمر والے کو اچھی بھی لگتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیوی بھی شادی کی جو بالکل بوڑھی تھی. میاں بیوی کے تعلق کے لائق ہی نہیں، جس میں ہمت ہی نہیں ہے کہ میاں بیوی کا تعلق قائم کر سکے. اور وہ بھی کہتی ہیں کہ مجھے اپنے سے جدا نہ کرنا، جدا نہ کرنا. پھر کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمارے تو بیوی جو ہے وہ اتنے مالدار گھرانے سے آ گئی ہے، میں کیسے ہینڈل کروں اتنے پیسے والی. اس کی تو مینٹیلیٹی جو ہے پرنسس والی ہے، اور میں غریب سا بندہ، مسکین سا بندہ، فقر فاقہ والا، ہینڈل کرنا ہی بہت مشکل کام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے پرنسس کے ساتھ بھی ہوئی. بی بی صفیہ جو ہے پرنسس تھی. اور اسی طرح مقابلے میں غلام بیوی بھی آئی. اگر یہ بات ہے تو یہ بھی کر کے دیکھو کہ یہ بھی ہے. یعنی جو بھی پاسیبلٹیز ہو سکتی تھیں میاں بیوی کے جوڑ کی، اس لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ازواج مطہرات دی. ایک بیوی ہینڈل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے، اور دو بیویاں آج کے دور میں تو پاسیبل ہی نہیں ہے ہمارے لیے. ایک سے ایمان مکمل، اور دو شادیاں کی تو ایمان ہی گیا، بندہ پکا بے ایمان. سمجھائیے نا. اس لیے ہمارے حضرت جی کہتے ہیں کہ حوروں کا بھی مت سوچو، وہ بھی دماغ سے نکال دو، حوریں ملیں گی وہ بھی اسکریچ کر دو، کیونکہ تمہارے اندر شہوت بھری ہوئی ہے اور حوریں پاکیزہ ہوتی ہیں، وہ تمہارے بارے سوچتی ہیں پاکیزہ انداز سے سوچتی ہیں، تم ان کے بارے میں سوچو گے گندے انداز سے سوچو گے. تو مت اپنی گندی سوچ ان کے لیے استعمال کرو. جب جنت میں جائیں گے اللہ سوچ کو بھی پاک کر دے گا، حوریں بھی عطا کرے گا، اور ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دے گا. ابھی اس وقت اس دور میں حوروں کو بھی مت سوچو، کیونکہ ان کو بھی سوچنے سے جو ہے دماغ خراب ہی ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ نے جو جوڑے بنا دیے انہی کے ساتھ زندگی گزارو، کیونکہ جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، وہ تو الزام لگائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیویاں تھیں، بھائی اتنی بیویاں ہینڈل کرنا آسان کام نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. دین اسلام کے اندر چار شادیوں کی جو اجازت ہے، یہ مزے لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ رسپانسیبلٹی شیئر کرنے کے لیے ہے. ایسے حالات آ سکتے ہیں انسانیت کے اوپر کہ بندے کو ایک سے زیادہ شادی کرنی پڑ جائے. مثلا کسی جگہ پر ایسا حالات آئے کہ مرد اور عورت کی ریشو میں میجر ڈفرنس آ گیا. اب ایسی صورت میں ایسی شادیاں کرنی پڑیں گی مردوں کو. اور عام طور پہ جب کوئی میجر کوئی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے تو کیجولٹی مردوں کی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مرد اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں، تو مردوں کی کیجولٹی بڑھ جاتی ہے اس میں. کسی ملک میں لڑائی ہوئی، کچھ ہوا، وہاں پر کیجولٹی ہوگی تو صاف ظاہر ہے مرد اس میں انوالو ہوں گے. تو اس صورت میں میل فیمیل ریشو کا ڈفرنس آ جائے گا. لہذا رسپانسیبلٹیز کیسے شیئر کریں گے، एक से ज्यादा रिश्ते करके उस वक्त हुक्म आ जाएगा, लेकिन अमूमन इसकी इजाजत नहीं है। तो आज बहरहाल जो चीज समझाना बताना चाहता हूं, अगर दूर बैठे हुए लोग जो हैं कागज पेंसिल ले लें और इन पॉइंट्स को लिखते चले जाएं, क्योंकि ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बाद में इनको अच्छी तरह याद कर लें ताकि जिंदगी का हिस्सा बन जाए। अपनी मैरिज को सक्सेसफुल चलाने के लिए एक दूसरे की कोताहियों पर नहीं खूबियों पर नजर हो, एक दूसरे की मिस्टेक्स को मत देखो बल्कि गौर करो कि उसी बंदे के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी बातें भी होंगी। हदीस मुबारक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें अपनी बीवी की कोई बात बुरी नजर आए तो तुम गौर करो तो तुम्हें इसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी नजर आ जाएंगी। हर इंसान में कॉम्बिनेशन होती है, अच्छी बुरी बातें होती हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो वो अच्छा लगेगा, नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि पॉजिटिविटी, सोच की पॉजिटिविटी। नंबर टू कि भाई बाज़ औक़ात सिचुएशंस जिंदगी में आई होती हैं और वो गुजर जाती है बात, किसी वक्त किसी ने कोई गलती कर दी, अब साल गुजर गया है, ये बंदा उसको याद रखता है और उसको ताना देता है, तो इसको कहेंगे कि मियाँ बीवी एक दूसरे को ताने ना दें। मसलन किसी ने शादी की, गरीब घर से बीवी को लेकर आया, सारी जिंदगी इसको कहता रहे कि तू तो उस घर से है, गरीब घर से मैं तुझे लेकर आया, आज तुम बड़ी बन गई। शरीयत ऐसा नहीं कहती, जब शादी हो गई अब वो गरीब घर की नहीं है, अब वो तुम्हारे घर की है, क्योंकि अमीर घर की लड़कियां होती हैं बाज औकात, वो एक की शादी अमीर से हो गई दूसरी की गरीब से हो गई, हालांकि ओरिजिनली दोनों अमीर घराने की थी लेकिन जहां गई उनका नसीब है। किसी अमीर घर में गई और वो वहां बैंकरप्सी हो गई, हालात बदल गए, क्या करेंगे, गुर्बत की जिंदगी गुजारेगी। तो भाई ये पॉसिबल है कि हालात बदल सकते हैं, लिहाजा मियाँ बीवी को ताने नहीं देने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक दूसरे को कोट करके ताने ना दो, तुम ऐसी थी तुम वैसी हो फलां, तुम्हारे से अच्छी तो हमारी वो रिश्तेदार है, मैंने तुम्हारे से शादी कर ली, करनी तो नहीं थी, मेरे नसीब फूटे है, वो दिल में कहेगी तुझे क्या पता मेरे साथ क्या हुआ। तीसरी बात, गुस्से को कंट्रोल रखें, मर्द भी गुस्से को कंट्रोल करें, औरतें भी गुस्से को कंट्रोल करें। मर्द गुस्सा करते हैं, अक्सर करते हैं, और औरतें बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हैं। औरतों को भी चाहिए कि वो अपने गुस्से को काबू में रखें और मर्दों को भी चाहिए कि वो अपने गुस्से को काबू कर रखें। जब भी अगर एक पार्टनर को गुस्सा आ जाए तो दूसरे पार्टनर को चाहिए कि उस टाइम थोड़ी देर सब्र कर लें, जो ही वो टाइम गुजरेगा तो वो गुस्सा खत्म हो जाएगा। शरीयत ने भी हुक्म दिया कि अगर गुस्से की हालत में आप खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, यानी अपनी पोजीशन को चेंज करें। आप वुजू कर लें, दो रकात पढ़ लें, इन सब चीज़ों के अंदर क्या है, पोजीशन चेंज करना। जब भी गुस्सा आए, इस कमरे में बैठे हैं, आपस में बातचीत चल रही है, उठ के दूसरे कमरे में चले जाओ, थोड़ी देर गुजरेगी, गुस्सा सबसाइड कर जाएगा, अब आराम से बात करेंगे, मामला ठीक हो जाएगा। बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर ये बात समझाई जाती है कि अगर कस्टमर आए और किसी वजह से वो गुस्से में आ जाए, तो रिसेप्शन के ऊपर या बिजनेस करते हुए आपके साथ एक बंदे के साथ अगर कस्टमर गुस्से में आ गया है, आप आगे कन्वर्सेशन ना चलाएं उसके साथ, खुद हट जाए, किसी और को भेज दें कि भाई ये मेरे साथ गुस्से में आ गया, अब आप इसको हैंडल करो। जो ही दूसरा बंदा स्टेप इन करेगा और वो उसे कहेगा भाई क्या बात है, आप क्यों नाराज हो रहे हैं, मुझे बताएं मैं आपको क्या सर्व कर सकता हूं, वो उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। अगर वो बंदा फिर आ जाए तो ये फिर इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वजह क्या है कि आप सिचुएशन चेंज करें। लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि घर में मियां बीवी रह रहे हैं, वहां तो भाई वही शक्ल देखनी है एक दूसरे की, तो लिहाजा उसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप उस एरिया से निकल जाएं, हट जाएं, थोड़ी देर के बाद दोबारा नए फ्रेश फेस के साथ आ जाएं, चले जाएं, जाके वजू करें और वजू करके वापस आ जाएं। अगर फिर भी टेम्परेचर हाई है तो भाई दो रकात पढ़कर आ जाएं, आके अस्सलाम वालेकुम करें, बैठें और कहें कि भाई आपको मेरी बात समझ नहीं आई। सेम थिंग बीवी को भी अगर खावन पे गुस्सा आ गया तो ये नहीं है कि जैसे ही घर के दरवाजा उसने अंदर कदम रखा और बीवी ने कैनन फायर कर दिया, अब वो बेचारा कभी राइट होगा कभी लेफ्ट होगा कि एक गोला निकल गया, तो वो कहेगी अच्छा बच गए, अब मैं फिर देखती हूँ, फिर वो दूसरा फायर करेगी। ऐसी सिचुएशन में फिर हस्बैंड को कहीं ना कहीं वो हाइड करना पड़ेगा। हमारे एक दोस्त थे, वो जोक किया करते थे, कहते थे हमारे मियां बीवी की जो है ना बड़ी अच्छी निभी है, तो उन्होंने कहा जी कैसे, इसने पूछा, कहते हैं जी ब्लैंकेट थ्योरी, ब्लैंकेट, जी वो क्या होती है, एक बीवी को गुस्सा आ रहा हो ब्लैंकेट लेके ऊपर डाले सो गए, सुबह उठे फ्रेश फ्रेश नाश्ता बना हुआ, तो ब्लैंकेट के साथ कहते हैं बड़ा काम चला। कितनी देर गुस्सा करेगी, जूठे बूटे खराटे मार दो। अगला पॉइंट, छोटी सी बात को बड़ा ना बनाएं। बाज़ औक़ात बात बड़ी छोटी सी होती है लेकिन लोग उसको बड़ा बना देते हैं। खाम खाई जब डिस्कशन शुरू होती है तो अना बीच में आ जाती है कि जी मैंने कहा था, आपने मेरी बात को अहमियत नहीं दी, आपको परवाह ही नहीं है। अब बात छोटी सी होगी लेकिन बड़ी होती चली जाएगी, मैंने मैंने मैंने। बाज़ औक़ात औरतें गुस्से से मैं करती हुई घर से चली जाती हैं रूठ कर, और खामद कहता है कि अच्छा अब तुम चली गई तो मैं भी तुम्हें मनाने नहीं जाऊंगा, अब वो जिद में आ जाते हैं और लोगों की इस बात पे तलाकें हो जाती हैं। तो ये मैं जो है ना अना, इससे बचना चाहिए, छोटी सी बात को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बाहिमी मोहब्बत को गर्म रखें, यानी एक दूसरे की जो मोहब्बत है इसको हमेशा जो है बढ़ाने की कोशिश किया करें। क्योंकि टाइम टू टाइम मोहब्बत जो है बढ़ती भी है घटती भी है, क्योंकि बंदा मसरूफ है। अब वो मोहब्बत तो नहीं कर सकता जो मियां बीवी शुरू शुरू के दिनों में होते हैं, जब दो तीन बच्चे हो गए अब वो गर्म जोशी कहाँ से लाएंगे। पहले मवद्दत होती है फिर बाद में तो रहमत ही बन जाती है, अल्लाह रहम करे। तो इसको समहाउ गर्म करना पड़ता है दोबारा। और वो तरीका क्या होता है कि एक दूसरे को अप्रिशिएट किया जाता है, एक दूसरे के लिए कोई प्रेजेंट होते हैं। और बाद लोग अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, बहरहाल इसका तो शरण कोई सबूत नहीं है, लेकिन मियां बीवी का एक दूसरे को टेक केयर करना, मोहब्बत करना, अच्छे कमेंट्स करना, इसकी जरूरत होती है, इससे इंटेंसिफाई होता है। अगर कोई चीज नेक्स्ट पॉइंट है ना पसंदीदा हो तो उसको अकल के साथ हैंडल करना चाहिए। मसलन बाज़ औक़ात जिंदगी के ऐसे मोड़ आते हैं खामद को कोई गलतफहमी हो जाती है या बीवी को कोई गलतफहमी हो जाती है कि जी मेरा हस्बैंड तो शायद किसी और में इंटरेस्ट ले रहा है। अब ऐसा ख्याल आया और बीवी ने शोर मचा दिया और रोना शुरू कर दिया, रूठ के बैठ गई, वो 100 बार कह रहा है कि भाई मेरे पास कोई और आइडिया नहीं है, तुम ही तुम हो, और वो मानती ही नहीं, अकल इस्तेमाल ही नहीं कर रही। तो ऐसी सूरत में बिलाआखर लड़ाई बढ़ जाती है। अगर रियली ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वाकई कोई एक पार्टनर ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाए या ट्रैप हो जाए, बाज औकात दूसरे लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं कि आपके घर को तबाह करने के लिए, कोई ऐसी फोन कॉल्स कर देते हैं कि इनका घर तबाह हो जाए, तो दूसरे पार्टनर को उस सूरत में अकल इस्तेमाल करनी चाहिए और अपने घर को बचाना चाहिए अकलमंदी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है कि मियां बीवी के मामले में अंदाजे नहीं लगाने चाहिए। अंदाजा लगाना बदगुमानी होती है, गैसिंग नहीं करनी चाहिए कि जी बस इसका किसी के साथ फना होगा, ये होगा, इसको शरीयत ने हराम कहा। अगला पॉइंट है तजस्सुस नहीं करना चाहिए, क्यूरियासिटी, चुपके चुपके से घर में दाखिल होना कि देखता हूं कि बीवी किसको कॉल कर रही थी, जरूर अपनी बहन को से बात कर रही होगी, फना हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, बल्कि घर में नॉक करके आने का हुक्म है। अगर वो कोई ऐसी बात हो भी रही हो तो उसको चाहिए कि वो फोन पहले बंद ही कर देगी, वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। हर चीज का जान लेने से फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। हो सकता है वो बंदा बाद में तौबा कर ले, लेकिन अगर तजस्सुस करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वला तजस्ससु, और ये जर्नलाइज हुक्म है, तो इस कुरानी आयत के अगेंस्ट होगा, आप खुद ही जलते फिरेंगे, खुद ही परेशान होते रहेंगे। हर वक्त तजस्सुस करके कुरेद कुरेद के बात की डेप्थ में पहुंचने की कोशिश ना करें। मियां बीवी का मामला है, सुपरफिशियल रहें, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एतमाद को ठेस ना पहुंचाए। अगर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है तो आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर हस्बैंड बीवी से एक्सपेक्ट करता है कि अगर मेरे बहन भाई अचानक भी आ जाएंगे तो ये अच्छा हैंडल कर लेगी, इसको चाहिए कि अपने स्ट्रेस को मेंटेन करें। सास ने कोई ऐसी बात कह दी है तो कोई बात नहीं है, हस्बैंड तो मोहब्बत कर रहा है, तो भाई उसके एतमाद को मेंटेन करें, इससे इंशाल्लाह आपके घर बेहतर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई मिस्टेक हो जाए बंदे से तो जल्दी से उसको माफ कर देना चाहिए। और माफ करना सिर्फ जुबान से नहीं होता कि अच्छा जी मैंने आपको माफ कर दिया, कल दोबारा फिर उस किस्से को लेके बैठा हुआ है, फिर उसने कहा खुदा के लिए माफ कर दो, अच्छा जी मैंने आपको माफ कर दिया, आज चले सो जाते हैं, मोहब्बत करते हैं। अगला दिन हुआ फिर वही किस्सा, कोई सारी जिंदगी तो माफी नहीं मांगेंगे। तो माफ करना होता है कि माफ करके भूल जाना, कि जल्दी से माफ करो। वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे होते हैं वो गुस्से को जल्दी से पी जाते हैं, दूसरों को माफ कर देने वाले होते हैं, और इनाम क्या मिलेगा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, इसके बदले में अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी ऐसे मुहसिनीन को। अब जिसको अल्लाह की मोहब्बत नहीं चाहिए तो वो ठीक है, वो फिर लोगों की गलतियों को याद रखे, बैठा हुआ चबाता रहे, जैसे जानवर जुगाली करते हैं, फूड उनके मुंह में होता है और चबाते रहते हैं, तो ये भी जुगाली करेगा सारी जिंदगी की। नेक्स्ट पॉइंट लिखने वाला, किसी तीसरे की वजह से अपने ताल्लुक को खराब ना करें। मियां बीवी का ताल्लुक अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि ये चूचे भी लड़ाते रहते हैं, यानी लड़ते भी रहते हैं और मोहब्बत भी करते रहते हैं। इस मजमून को तैयार करते हुए दिल में ख्याल आ रहा था मियां बीवी तो चाहे जो मर्जी कर लो जरूरी लड़ते रहेंगे, क्या किया जाए भाई। तो एक ही तरीका है कि माफी मांगते रहो, जिंदगी का तो कुछ पता नहीं है भाई, हज पे जा रहे हैं सारे मोहल्ले से माफी मांगी बीवी भूल गई, और अल्लाह के बंदे सबसे ज्यादा तो इसी से लड़ाई की थी, हत्ता के आदत बना ले कि अगर नमाज के लिए जा रहे हैं तो पीछे घर वालों से माफी मांग के जाना चाहिए। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह औलाद हबीब रहमतुल्लाह, एक मरतबा बीवी वुजू करा रही थी, बुढ़ापे का जमाना था, और पानी डालते हुए वो कुछ मिस्टेक हुई उनसे, तो आपने कहा कि भाई आप ख्याल ही नहीं रख रही पानी किधर डाल रही हैं। वुजू उन्होंने करवा दिया, और ये क्योंकि मस्जिद बैत थी घर के करीब ही, तो जब रास्ते में जाने लगे तो दिल में ख्याल आया किस मुंह से अल्लाह के सामने हाजिर होऊंगा, अल्लाह की मखलूक को तो इजा दे के आ रहा हूं। फौरन एक बच्चे को कहा कि इमाम साहब से कहना मैं आ रहा हूं, नमाज में मेरा इंतजार करना। वापस लौट के गए, बीवी से जाके माफी मांगी कि अल्लाह की बंदी मैंने आपका दिल दुखाया, आप मेरी खिदमत कर रही थी, वुजू करा रही थी, मैंने आपको झटकी दे दी, आप मुझे दिल से माफ कर दो ताकि मैं अल्लाह के यहाँ नमाज पढ़ सकूं। लौट के गए और जाके फिर अपनी नमाज पढ़ी। तो बार बार हैबिट बनाए, जुमे पे जा रहे हैं, अच्छा भी मैं जुमे के लिए जा रहा हूं, दुआ करना मेरा जुमा कबूल हो जाए, कोई हक हो तो माफ़ कर देना। माफ़ी मांगने का भी तरीका है, हर दफ़ा ये नहीं कि मैंने आपको लास्ट टाइम डांटा था मुझे माफ़ कर देना, वो कहेंगे भाई खुदा के लिए वो डांटा एक दफ़ा था और 100 मरतबा तुमने उसको याद करवा के मुझे इरीटेट किया हुआ है। ये तरीका नहीं होता माफ़ी मांगने का। माफ़ी मांगने का तरीका क्या है भाई, अगर कोई भी आपका हक हो आप मुझे माफ़ कर दें मुस्कुराते हुए। अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ हज पे जा रहा हूँ, उम्र पे जा रहा हूँ, जुमे के लिए जा रहा हूँ, भाई रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है, रजब है, शाबान है, शुरू हो रहा है, सुभान अल्लाह, भाई कोई बात हो तो माफ़ कर देना। भाई रात हो गई है, मियाँ बीवी का ताल्लुक है, भाई ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, अल्लाह की बंदी मुझे माफ़ कर देना। रोज़ी आप मांगे भाई, इसी को तो सबसे ज़्यादा सताते हैं, तो उसी से सबसे ज़्यादा माफ़ियाँ मांगते रहो, है ना। और माफ़ी मांगे उसको इरिटेट ना करें कि वो कहे कि यार किस क्या शेख ने पीछे लगा दिए। तरीके से, अच्छे तरीके से, है ना, कि वाकई लगे कि भाई ये मोहब्बत करता है, यानी कि माफ करा लिया फिर नए से शुरू से, पिछला मिट गया ताज़ा हो गया। वो एक दफ़ा माफ़ करेगी, दो दफ़ा करेगी, तीसरी दफ़ा करेगी, जा मुझे पता है आदमी मुजरम है, चक्री बनते हो, गुनाह सब मिटाते जा रहे हो, नए करते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। अगला पॉइंट है कि एक दूसरे का दिल खुश करने की कोशिश करें, सुभान अल्लाह। एक रिवायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफहूम, जब बंदा किसी मोमन का दिल खुश करता है अल्लाह ताला इस खुशी से एक फरिश्ते को पैदा करते हैं, वो फरिश्ता क्यामत तक अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता है और क्यामत के दिन उसके जन्नत में जाने का सबब बनेगा। अब आम बंदे का दिल खुश किया इससे भी फरिश्ता पैदा होता है, मियाँ बीवी का ताल्लुक है, बार बार एक दूसरे को जी खुश करो, कभी कोई अच्छी बात करके, कभी कोई अच्छा तोहफा देकर, और कभी किसी अंदाज से, कभी किसी अंदाज से। बाज़ औक़ात मियाँ बीवी थके होते हैं, एक दूसरे की हेल्प चाहिए होती है, भाई आपने हेल्प आउट कर दिया, खुश हो गए। बीवी सारा दिन बच्चों को संभालती रही, आप घर दाखिल हुए, आपने महसूस किया थकी हुई है, अच्छा आप फिक्र नहीं करें मैं बच्चों को थोड़ी देर पकड़ लेता हूँ, आपने बच्चे को संभाल लिया, बीवी का जी खुश हुआ कि देखो इसको फीलिंग है कि मैंने सारा दिन, ये 24 आवर की मुलाजमा है, हर जॉब के आवर्स होते हैं, और ये बेबी सिटिंग के कोई आवर्स नहीं है, 24 आवर 7 डेज कॉन्स्टेंट वर्क है। वो एक्सपेक्ट करती है कि आप थोड़े से तो शेयर कर लें, और कुछ नहीं तो फीलिंग कर लें, तो अगर आप इतना कर देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसका इनाम देंगे। अगला पॉइंट लिखने वाला कि अपनी लव को एक्सप्रेस करें, एक दूसरे से मोहब्बत जितलाया करें। जब शादी पुरानी हो जाती है तो लोग अपनी लव को एक्सप्रेस नहीं करते, शुरू शुरू में बहुत करते हैं, बाद में रूटीन हो जाती है। तो चाहे ओल्ड एज भी हो जाए तब भी मियां बीवी को अपनी मोहब्बत जितलानी चाहिए। ये नहीं है कि भाई अब तो हम किसी काम के ही नहीं रहे तो क्या बातें करनी, ऐसा वक्त भी आ जाता है, सिर्फ चाय पे ही काम चलता है, बस चाय पी लें बड़ी खुशी हुई। तो ऐसी सूरत में फिर लफासी करनी आनी चाहिए, उस बुढ़ापे में तो कोई तारीफ नहीं करेगा, तो मियाँ ही करेगा, याद करेगा ओहो क्या जमाना था, आप चलती थी, छन छन की आवाज आती थी, बीवी कहेगी इसको याद है, और तो कोई नहीं कहेगा ना। तो ये करने वाली चीजें हैं, ना महरम को नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, बाहम मशावरत का वक्त निकालें, एक दूसरे के साथ बातचीत करने का टाइम रखा करें। बाज मियां बीवी बातचीत नहीं करते, काम करते रहते हैं, वो अपना काम कर रही है, ये अपना काम कर रहे हैं। ये इस तरह से है जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, वो भी जिंदगी गुजार रहा है, ये भी जिंदगी गुजार रही है, एक ही घर में रहते हैं, डिस्टेंट होते हैं। ये भी एक किस्म का अब्यूज है, इसको अब्यूज की लैंग्वेज में निगलेक्ट कहते हैं। हमारी सोसाइटी में फिजिकल अब्यूज इतना नहीं है, हमारे मुल्कों में मियां को गुस्सा आया उसने एक दिया यहां उसको पता है मैं एक दूंगा वापसी भी आएगा, तो वो क्या होता है यहां पर निगलेक्ट होता है। इस सोसाइटी के अंदर बच्चों को भी निगलेक्ट किया जाता है, बूढ़ों को भी निगलेक्ट किया जाता है, मियां बीवी को भी निगलेक्ट किया जाता है। लोगों के पास करज ही नहीं होती कि एक दूसरे से बात कर सकें। तो उसका सलूशन क्या है, आप घर में डिस्कस करें, डिस्कशन के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाते हैं। अगर आपने चांस ही नहीं दिया, पूछा ही नहीं कि आपका दिन कैसे गुजरा, तो बीवी कैसे बता सकती है आपने पीछे मैं गया था आपने क्या किया, बताएगी मैंने मेरे फला प्रॉब्लम था, मैं ये कर लिया कि ये कर लिया। हमारे एक दोस्त ने कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आज जुमे के बाद हमारी मुलाकात हो गई उनसे। अब कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला बंदा है, हमारे से बेहतर जानता है, उसने कहा जी मैं काम कर रहा था, एक जगह एक पॉइंट आया कि मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं आप इसको कैसे रिजॉल्व करूं। तो मुझे उस वक्त ख्याल आया कि अच्छा मैं हजरत से मिलूंगा, वो मुझे बता देंगे, छोड़ो जी मैं आप मजीद नहीं सोच सकता। तो कह लेंगे बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात हुई है, और उसने अभी यूं कहा कि भाई ये मेरा मसला है, और मैंने कहा कि भाई कल मेरी अधूरी डिस्कशन हुई आपसे और मैं सोच रहा था कि आपको ये प्रॉब्लम आएगा, इसका ये सलूशन है। कहेंगे मेरा तो मसला ही हल हो गया। अब अल्लाह ताला ने मशवरे के अंदर बरकत रखी हुई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मशवरा करते थे, अल्लाह ताला हुक्म देते थे सहाबा से मशवरा करो। तो आप बीवी से मशवरा करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीवी बड़ी इंटेलिजेंट है, या भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, बीवी ने आपसे पूछ लिया, तो आप ना इंटेलिजेंट बनते हैं ना वो इंटेलिजेंट बनती है, बल्कि इल्हामी चीज होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी किसी के दिल में डाल देते हैं, कभी किसी के दिल में डाल देते हैं। जब आप मशवरा करेंगे आपके अंदर आजी डाल देंगे, और अल्लाह ताला बरकत किसी के और के थ्रू आपको बतला देंगे। लिहाजा किसी को छोटा ना समझे, बल्कि अपने बच्चों से भी मशवरा किया करें। मैंने खुद कई मरतबा कोई अटका हुआ काम होता है, मैं अपने बच्चों से मशवरा करता हूं, बुला लेता हूं उनको, मेरा बच्चा इधर आओ, जी अबू मुझे भी फला चीज समझ में नहीं आ रही, मेरा बच्चा उनके प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझे बताओ कि क्या करूं इसको। कहते हैं अबू ऐसे कर लो, एक ने मशवरा दिया, दो ने दिया, उसमें से पिक कर लेता हूं, आइडिया मुझे समझ में आ जाता है। अच्छा वाह वंडरफुल बात आपने कर दी, जबरदस्त, हाँ ऐसे कर लेते हैं। बाद छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े मशवरे दे देते हैं, तो घर की बीवियों से मशवरा करना कौन सी बुरी बात है, बड़े बड़े मसाइल मशवरा करने से रिजॉल्व हो जाते हैं। अगला पॉइंट लिखने वाला, एक दूसरे को तहफ्फुज का एहसास दिलाएं। मियां बीवी इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को डराते रहते हैं, साल साल गुजर जाते हैं, ट्रस्ट पैदा नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा नुक्सान है। इसी तरह एम्प्लाई और एम्प्लॉयर रिलेशन के अंदर ये बहुत सेंसिटिव बात है। अगर एम्प्लाई को सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाए कि मेरा रिलेशन शॉर्ट टर्म नहीं है, तो वो डट के काम करता है। सिमिलरली अगर एम्प्लाई एम्प्लॉयर को ये सेंस दे दे कि जनाब मैं इस जॉब पे 100% कंफर्टेबल हूं, तो उसकी प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो स्टेबिलिटी मिलेगी, बेनिफिट्स बढ़ेंगे, हर चीज मिलेगी। एग्जैक्टली इसी तरह मियां बीवी हैं, बाद खामद होते हैं, हर वक्त उनकी जुबान पर एक लफ्ज होता है कि मैं डिवोर्स दे दूंगा। तो अब बीवी को अगर ये चाहे उसने नहीं कहा, लेकिन इंप्रेशन ये रखा हुआ है कि मैं आपको छोड़ भी सकता हूं, तो बस आप ये समझ लो कि उसने जरूर अपने लिए दूसरी सिक्योरिटी तलाश करनी है। आप उसको एक दफा समझा दे, आप आई और मेरे साथ फंस गए, बस मैं ऐसा चिच्चड़ हूं, आपको छोड़ूंगा ही नहीं, कर लो जरा कुछ करना है कर लो, जियो तो चाहे मरो मेरे साथ रहो। बीवी कहेगी सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, ए मेरी जान नहीं छोड़ता, वो निभाएगी बेचारी उसी के साथ जिंदगी गुजारेगी, क्या करेगी, तैयार कर लेगी अपने माइंड को कि भाई इसके साथ रहना है, इसको अंडरस्टैंड करो और इसी के साथ जिंदगी गुजारनी है। जो उसको ये आप इंप्रेशन दे दें कि मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूं, तो वो कहेगी इसको इरिटेट करो ताकि मेरी जान छोड़े। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस मुल्क में मर्दों से ज्यादा औरतें तलाक देती हैं। आप सेंसेस देखेंगे और आपको पता चलेगा खुला लेने वाले लोग ज्यादा हैं, तलाक देने वाले लोग कम हैं। शरिया बोर्ड से पूछ लेना, मुफ्ती साहब है ना यहाँ पर, कॉल करके उनसे पूछो कि तलाक ज्यादा होती है या खुला ज्यादा होती है, आपको बता देंगे। वो दौर गुजर गया कि मर्द तलाक दिया करते थे, आज हर गिरी पड़ी चीज को उठाने वाले लोग बाहर फिरते हैं, माहौल बदल चुका है, औरतें बाहर सड़कों पे जाती हैं, जाबे करती हैं, हर वक्त उनको इंप्रेशन देने वाले फिरते हैं, हर किस्म के लोग फिर रहे होते हैं। तो लिहाजा अपने घर की हिफाजत करो मेरे भाई। नेक्स्ट पॉइंट, एक दूसरे के अच्छे काम की तारीफ करो। बंदा जब किसी की तारीफ करता है उसकी थकन दूर हो जाती है, अप्रिशिएट करना चाहिए। हस्बैंड ने कोई भी अच्छा काम किया, मसलन बच्चे को संभाला है, एक जुमला ही बता दो कि भाई माशाल्लाह आपने बड़ी मेरी हेल्प कर दी है, थैंक यू। वो नेक्स्ट टाइम कहे, दूसरी दफा भी वो कहेगा मुझे दे दो। अगर आपने उसको थैंक यू ही नहीं कहा और ये इंप्रेशन दिया कि मैं भी तो सारा दिन उठाती रही थी, बच्चे को संभालती रही हूँ, तुमने अगर घंटा एक काम कर लिया तो क्या कमाल कर दिया है, तो अगली दफा वो घंटे के बजाय कहेगा आधे घंटे में जान छोड़ो। भाई अप्रिसिएशन ही नहीं मिली ना। आप अगर हस्बैंड ने किसी किचन के काम में हेल्प कर दी, आपने थोड़ा सा कुछ कह दिया कि माशाल्लाह आपके साथ काम करते हुए काम ही नहीं लगता, फन बन जाता है। अब बताओ कि अगर बीवी यूं अल्फाज बोल दे तो हस्बैंड का जी चाहेगा कि हर वक्त ही मैं आके हेल्प करूं इसकी। ये मोटिवेशन होती है। इसी तरह बीवी से आपने कोई मशवरा किया, उसने समझदारी का जवाब दे दिया, आपने कहा जी माशाल्लाह देखो मुझे बात समझ में नहीं आ रही थी, आप बहुत स्मार्ट हैं, आपने अच्छा जवाब दिया, आपने अच्छे मशवरा दिया, आइंदा उसको करेज होगी, वो आपसे और ज्यादा बातचीत करेगी। तो एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए, ये नहीं कि बस तुम तो पागल ही हो, कभी भी अकल की बात नहीं की तुमने, वो कह कि छोड़ो परे, इससे दिमाग खपाने की जरूरत ही क्या है। अगला पॉइंट, एक दूसरे के वालिदैन का एहतराम करें। शरीयत ने शादी के बाद इन लाज को भी माँ बाप का दर्जा दिया है, वो भी आपके माँ बाप की तरह हैं। कभी भी किसी को इस पोजीशन में ना डालें कि वो अपने माँ बाप या अपने स्पाउस में से किसी एक को पिक करना पड़ा जाए। अगर वो माँ बाप की बात मानेगी, खावन की या बीवी की नाफरमानी या उसकी दिलशिकनी होगी, अगर आप यूँ समझे कि ऐसी पोजीशन में आपने डाल दिया एक दूसरे को कि या तुम अपनी अम्मी की बात मानो या मेरी बात मानो, तो क्या होगा? एक ही नाफरमानी तो जरूर होगी ना, एक का दिल तो जरूर टूटेगा ना। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो अपने आप को विड्रॉ कर लें, उस कंपटीशन में मत जाए। किसी ने कहा कि अम्मी ने कहा है कि भाई ये चीज करो, अच्छा अम्मी ने कहा है माशाल्लाह जरूर करो, आप हट जाए। आप एक दफा हटेंगे, दो दफा हटेंगे तो अम्मी तक भी तो बात पहुंचेगी, वो भी तो आखिर माँ ही है ना, वो कहेगी बेटा नहीं, आप पहले हस्बैंड की बात सुनो, उन्होंने जो कहा है वो कर लो, सारी जिंदगी मजे करो। तो इस तरह से अपने आप को इन लाज के साथ कंपटीशन में ना खड़े करें। बीवी के लिए भी सेम थिंग, खावत के लिए भी सेम थिंग। शादी हुई, नए नए आए, अच्छा मैं देखती हूँ आप मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अपनी अम्मी से ज्यादा करते हैं या अपनी बहन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये एक और लतीफा याद आ रहा है, हम साइकेट्री में काम करते थे तो वहां जो वो लेडी जो ना, एक स्किजोफ्रेनिक पेशेंट था, पागल, आला दर्जे का पागल भी तो होता है ना, जिसको हलूसिनेशन एंड डिल्यूजन हो रहे होते हैं, उसको चीजें नजर आती हैं और उसको वो अपने आप को समझता है कि मैं प्रेसिडेंट हूं, इस टाइप का वो डिल्यूजन होते हैं उनको कहते हैं। अब वो लेडी जो ना, मुझे, मैं नया नया वहां भर्ती हुआ तो मुझे वो इंटरव्यू देने करने का तरीका सिखा रही थी, तो सीनियर थी वो, तो बड़ी तरंग में आकर उसने मरीज से पूछ लिया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, आगे से उसने ऐसी मोटी सारी गाली दी, दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट यू। अब वो शर्मिंदा मुझे भी देखने लगी, यानी उसने सारा इंटरव्यू लेकर उसको पूछा कि वो समझ रही थी ये मेरी तारीफ करेगा कि तुम तो बहुत अच्छी हो भाई, तुम मेरा ख्याल रखती हो बहुत, लेकिन वो उसने आगे से उसको गाली दे दी। अल्लाह माफ करे। तो बताना क्या है कि अपने आप को ऐसी पोजीशन में ना डाल दें कि आगे से कोई मोटी सारी चीज मिले। अगला पॉइंट है कि जब रात को सोएं तो नाराज हालत में ना सोएं, नाराज हालत में मत सोएं, उससे पहले पहले अपने मामले को सॉरी कर लें एक दूसरे के साथ और आपस में एग्री हो जाए, सेटल डाउन हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, जिंदगी में अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो एक दूसरे का सहारा बने। मसलन बीवी बीमार हो गई है, जिंदगी का ऐसा वक्त आ जाता है, या खावन के बिजनेस के हालात खराब हो गए हैं, तो अब सपोर्ट चाहिए होती है। ये नहीं है कि डूबते हुए को धक्का दे दो, उससे गलती हुई है, मेजर मिस्टेक कर बैठा किसी बिजनेस में, अब लॉस हो रहा है, आप उसको कहना शुरू कर दें कि तुम तो बस काम ही नहीं जानते, इतनी ऑब्वियस सी बात थी आपने क्या कर दिया, अजीब फैसला करते हैं, तो वो सहारा नहीं बल्कि उल्टा दूसरे को नुकसान देना है, और इसका अल्टीमेटली खुद अपने आप को नुकसान पहुंचेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक दूसरे को मुस्कुराकर भी देखना चाहिए। घर में दाखिल हों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते चेहरे से आते थे, और इसी तरह बीवी चाहे जितनी भी मसरूफ बैठी हो, थोड़ी देर काम को छोड़कर हस्बैंड आए तो उनको वेलकम करें, बाकी कामों को छोड़ देना चाहिए। और अच्छी औरतें तो बल्कि हस्बैंड के आने के वक्त साफ सुथरी तैयार होकर खुशबू लगाकर इंतजार कर रही होती हैं, खाना पका के रखें, हस्बैंड आए माशाल्लाह बैठे जी खाना खाते हैं, अब अगर यूं स्टार्ट करेंगे तो देखो कितनी मोहब्बत बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, खाना मिलकर खाएं। वैसे भी शरीयत के अंदर खाना इकट्ठे खाने का जो है हुक्म दिया गया, तो फैमिली डिनर जिसे कहते हैं वो होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर नाश्ते में भी मर्द हजरात जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और घर से जा रहे होते हैं, लंच बाहर करते हैं, तो डिनर टाइम को सेलिब्रेट करना चाहिए। उसमें औरतों को भी चाहिए कि वो डिनर तैयार करें, और हस्बैंड को भी चाहिए कि वो थोड़ी भूख रख कर घर में आएं, खा पी के घर आएंगे, उसने डिश बनाई, और अगर कहीं खा भी लिया तो प्रिटेंड करें कि हम दोबारा खाएंगे, हो सकता है कि आपकी बीवी आपके खाने के इंतजार में बैठी हो। तो खाना मिलके खाना अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, एक दूसरे को प्रेजेंट दिया करें, चाहे वो एक फूल ही क्यों ना हो। तहादु तहाबु, हदिया दो मोहब्बत बढ़ेगी। शुरू शुरू शादी के दिनों में तो खूब तोहफे देते हैं, चंद साल जो है गोल्ड भी मिलता है डायमंड भी मिलते हैं, बाद में याद ही नहीं रहता शादी की बर्थडे कब थी, वो शादी की क्या कहते हैं एनिवर्सरी डे क्या था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी कभी कोई पर्सनल काम हो हस्बैंड वाइफ का, तो उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कि अगर कोई उसकी पर्सनल नीड है, बाज़ औक़ात ख़वातीन की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें पर्दा होता है, वो सिर्फ हस्बैंड से ही कह सकती हैं कि ये आप मुझे ला के दे दें। हस्बैंड को चाहिए कि वो अंडरस्टैंड करें कि ये बीवी की पर्सनल चीज है, चाहे वो शैम्पू ही क्यों ना हो। अगर वो बीवी कह रही है कि मेरे लिए फला चीज लानी है जो उसकी पर्सनल चीज है, तो उसको जरूर ख्याल रखें। ये नहीं कि वापस आए भूल गए, सारी ग्रासरी की और वो चीज भूल गई, खावंद जो है फला खाने में फला चीज इस्तेमाल करते हैं और बीवी भूल ही गई, याद ही नहीं रहा उसको, तो वो फील होता है कि जैसे इग्नोर किया जा रहा है। खावंद ने कहा कि मैंने कल मीटिंग के लिए जाना है, वो स्पेशल है, मेरे कपड़े तैयार कर देना। बीवी को भूल ही गया, हस्बैंड कल तैयार हुए और देखा कि कपड़े ही नहीं है, लॉन्ड्री नहीं हुई हुई, अब भी मैं कैसे जाऊंगा। अब इस जो ये ट्रिगर करता है, ये ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिसमें घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि घर के जो काम होते हैं इनको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए, यानी घर के मसाइल को क्विकली रिजॉल्व करना चाहिए। मसलन बंदे को कहा कि ग्रॉसरी ला के देनी है, और उन्होंने कहा कि अच्छा अभी तो है ना कुछ घर में पड़ा, कल ले आएंगे। उन्होंने अगले दिन फिर रिमाइंडर दिया, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, गुजारा चला लें, कल ले आऊंगा। कुछ लोगों को पोस्टपोन करने की हैबिट होती है, तो वो 3-4 दिन के बाद क्या होगा, लड़ाई होगी ना। जब आप उसको पोस्टपोन करते रहेंगे, मसाइल का हल नहीं तलाश करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम आएगा। अगला पॉइंट लिखा है कि वक्तन फवक्तन तफरी के लिए वक्त निकालें। अब बंदा एक सिचुएशन से थक जाता है, उसको जरूरत महसूस होती है कोई खुली जगह पे जाऊं, किसी बाग में चले जाएं, कोई एक्टिविटी हो जाए। औरतें घर में अक्सर रहती हैं, इनको बाहर जाने का बाज़ औक़ात डिज़ायर होती है, और वो हस्बैंड के साथ ही जा सकती हैं, तो लिहाजा इसको अरेंज करना चाहिए। हाँ, इसमें एक पॉइंट याद रखें, जब बच्चे छोटे होते हैं तो लंबे सफ़र में जाकर एंजॉय करना मुनासिब नहीं, बल्कि करीब करीब इंजॉयमेंट तलाश करनी चाहिए, क्योंकि अब आप सिर्फ दो ही नहीं इंजॉय कर रहे, आपके साथ बच्चों ने भी इंजॉय करना है। 2-3 घंटे दूर जाएंगे, बच्चे थक जाएंगे, क्या इंजॉय करेंगे वहां जाकर, चिड़चिड़े होंगे, रोते रहेंगे, वापस आएंगे बीमार होकर आएंगे। तो लिहाजा ऐसी एक्टिविटीज को अरेंज करें जो नियर बाई हों जब बच्चे छोटे हों। हाँ, जब बच्चे बड़े हो गए, बेशक हज भी ले जाओ, साल में एक मरतबा हज करा के आ जाओ, अम्मिया बीवी जा रहे हैं हज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जितना मर्जी दूर चले जाओ, कोई हर्ज नहीं है। उस वक्त फिर सिचुएशंस बदल जाती हैं। एक दूसरे से राबता रखें, यानी अगर आप काम पे भी हैं तो एक दूसरे को फोन करके या टेक्स्ट करके इतला दे दे कि मुझे देर हो रही है, फना वजह है। जब उनको पता चल जाएगा कि ये काम में बिजी हैं, बेकार दोस्तों में नहीं खड़े हुए, तो बीवी अंडरस्टैंड कर लेगी, झगड़ा नहीं होगा। नेक्स्ट चीज है कि मियां बीवी के मामले में शोहर बीवी को कुछ जाती खर्चा दे, फिर उसके बाद उससे ना पूछे कि तुमने भाई को दिया या बहन पे खर्च किया। आपने उसको दे दिया, अब वो उसकी मर्जी जहां मर्जी खर्च करे। अगला पॉइंट, रिस्क के हलाल पर खुश रहें। डिमांड नहीं करें कि फला इतने कमाते हैं, वो भी तो आपकी तरह ही डॉक्टर हैं, तो आप क्यों नहीं कमाते हैं? उसका रिस्क उसके साथ, आपका रिस्क आपके साथ। नेक्स्ट पॉइंट लिखने वाला है कि अलग मकान लेकर दें, या अलग जगह इतनी हो कि जिसमें प्राइवेसी होनी चाहिए। यूं दूसरे लफ्जों में ये कहना चाहिए, सफिशिएंट प्राइवेसी प्रोवाइड करना मर्द के जिम्मे है। बाद लोग ऐसे होते हैं, नहीं जी हम दोनों भाई हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा सारा घर बनाएंगे, प्राइवेसी नहीं होगी। हमने अब बाद लोगों के घर देखे, इतने बड़े बड़े मिलियनर, और उसमें दो भाई इकट्ठे रह रहे हैं, अल्लाह के बदले तो ऊपर नीचे करके बना लेते। कम से कम जब आपस में मिले ठीक है, जब अलहदा हुए तो वो अपने घर, तुम अपने घर। मियाँ बीवी का कभी कैसा मूड, कभी कैसा, नहीं जी हम एक किचन रखेंगे, बड़ी मोहब्बत है। खुदा के बंदे, औरत को अपना किचन चाहिए और प्राइवेसी चाहिए। अगर आपके पास गुंजाइश हो, या इसके लिए कोशिश करें कि जितने जल्दी हो सके आप अपने घर को प्राइवेट करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक दूसरे के लिए साफ सुथरा रहना चाहिए। बाद मर्द ऐसे हजरात होते हैं कि जो घर में आते हैं और ऐसे लिबास में फिरते हैं कि अचानक अगर कोई आ जाए तो शर्मिंदगी होती है। जो सही लिबास होता है वो यही लिबास कहलाता है। अगर अचानक कोई आ जाए तो बंदा एम्बेरस ना फील करे। इतना लिबास में रहना घर में मैंडेटरी है। मतलब किसी ने बनियान पहनी हुई है और नीचे से धोती पहनी हुई है, अब बेचारी बीवी के नसीब कि वो इसको देखे है। आप बताओ कुछ ऐसे के बाद तो उस बेचारी की क्या फीलिंग होगी। तो बाद लोगों ने अजीब अपनी शक्ल बनाई होती है। बाद लोग डिओड्रेंट नहीं यूज करते, औरतें होती हैं डिओड्रेंट नहीं लगाती। मैं आपको सही बताऊं, हमारे पास एक पेशेंट आती थी, वो डिओड्रेंट नहीं लगाती थी, साफ सुथरी होती थी, कपड़े कपड़े पहने में सही अच्छे कपड़े होते थे, लेकिन अब कितना बड़ा ऑफिस है, वो जब चली आती थी हम दरवाजे खिड़कियां खोलते थे जैसे लगता था कि मछली जेब में रख के आई है, और हमें अपने ऑफिस में डिओड्रेंट छिड़कना पड़ता था। अगर आप ऐसे घर में रह रहे हो तो आप बताओ फिर नसीब है हर एक के अपने अपने। अगला पॉइंट है कि पसंदीदगी का मियार खूबसूरती नहीं दीन है। बीवी और खावन दोनों अपने माइंड में ये रखें कि जाहिरी खूबसूरती की बजाय बातनी खूबसूरती जो है वो असल खूबसूरती है, और उसकी वजह से एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए। ऐसी बीवी से शादी करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे, फिर सभी देखेंगे, आप तो नहीं देखेंगे ना। बीवी ऐसी हो कि जिसके अंदर बातनी खूबसूरती हो। अगली चीज है कि भाई शुक्र गुजारी अख्तियार करें। घरेलू मामले में जो बंदा शुक्र गुजारी करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे अच्छा घर दे दिया, अच्छी बीवी दे दी, अच्छी औलाद दे दी, जितना शुक्र करेगा अल्लाह नेमतों को बढ़ाते चले जाएंगे। आखिरी बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मियां बीवी के मामले में वाशिरूहुन्ना बिलमारूफ कहकर औरतों के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने की सिफारिश की है, रिकमेंडेशन की है, यूं समझें कहा कि अगर तुम औरतों के साथ अच्छी जिंदगी गुजारोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन तुम्हारे साथ भी टॉलरेंस करेंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही नसीहत है। आपने आखिरी बात जो कही वो बीवियों के हकूक के बारे में कहा, नमाज और मलकत अईमानुकुम, यानी और अब जो तुम्हारे मातहत हैं, तुम्हारी बीवियां हैं, उनके साथ अच्छी जिंदगी गुजारना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक, अय्युमा इमरातिन मातत, के अगर कोई जब कोई औरत फौत हो, वज़ौजुहा अनहा रादिन, और उसका खावंद उससे राजी हो, दाखलतिल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगी। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।